नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। उन्होंने कहा, अमेरिका का स्वर्णिम युग शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित वैश्विक नेताओं ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी बधाई। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। संविधान लागू होने के 75 वर्ष और जन भागीदारी पर होगा विशेष ध्यान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापस लेने के बाद 699 उम्मीदवार मैदान में। और नीदरलैंड में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में आर प्रज्ञानंदा भारत के नंबर एक अर्जुन एरिगेसी को हराकर शीर्ष स्थान पर। डी गुकेश को ड्रॉ पर संतोष करना पड़ा। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल रोटुंडा में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने उन्हें कल रात पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान उपराष्ट्रपति पद के लिए जेडी विंस को न्यायमूर्ति ब्रिट केवनॉ ने शपथ दिलाई।
राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल लगाने की घोषणा की ताकि ईंधन की कीमतें घटाई जा सकें। उन्होंने कहा कि देश में एक नए अध्याय का शुभारंभ हो रहा है।
We will stand bravely, we will live proudly, we will dream boldly, and nothing will stand in our way because we are Americans. The future is ours. And our golden age has just begun.
राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वच्छ ऊर्जा संबंधी पहलों को वापस लेने सहित अपनी कुछ योजना का उल्लेख करते हुए नए हरित समझौते और विद्युत चलित वाहनों की अनिवार्यता समाप्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल के अमेरिका की खाड़ी करने की योजना की भी घोषणा की। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस समारोह में कई विदेशी राजनेताओं सहित उद्योगपतियों ने भी भाग लिया। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व के कई नेताओं ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दूसरे कार्यकाल के लिए पदभार संभालने पर बधाई दी है। एक रिपोर्ट।
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे एक बार फिर उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, जिससे दोनों देशों को लाभ हो और विश्व के बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि उन्हें दृढ़ विश्वास है कि दोनों देशों के बीच मित्रता और वैश्विक चुनौतियों को मिलकर सामना करने में सहयोग बढ़ेगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका इसराइल के संबंधों को नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ट्स ने कहा कि अमेरिका जर्मनी का सबसे करीबी सहयोगी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि ब्रिटेन और अमेरिका के बीच संबंध और प्रगाढ़ होंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला द सिल्वा ने कहा कि ब्राजील और अमेरिका के बीच सहयोग ऐतिहासिक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलादिमिर जेलेंस्की ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा निर्णायक रहे हैं और उन्होंने शक्ति के माध्यम से शांति की जिस नीति की घोषणा की है, वे अमेरिकी नेतृत्व को मजबूती और न्याय पूर्ण तरीके से दीर्घकालिक शांति हासिल करने का अवसर प्रदान करती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का शानदार प्रदर्शन होगा। इसमें संविधान लागू होने के 75 वर्षों और जन भागीदारी पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित रहेगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि कर्तव्य पथ पर परेड में भारतीय सशस्त्र बलों के साथ साथ इंडोनेशिया का 160 सदस्यों का मार्चिंग दस्ता और 190 सदस्यों का बैंड दस्ता भी भाग लेगा। इस अवसर पर 34 श्रेणियों के लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को राष्ट्र और समाज के निर्माण में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री जनमन पर जिलाधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके सम्मेलन में भाग लेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बताया है कि 18 राज्यों के कुल 88 जिले चर्चा में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दिल्ली में 70 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव में नाम वापसी के बाद कुल 699 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। नामांकन वापस लेने का कल अंतिम दिन था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 1522 में से 487 नामांकन खारिज कर दिए गए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को और मतगणना 8 फरवरी को होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात जंगपुरा निर्वाचन क्षेत्र की।
जंगपुरा उन सीटों में से एक है जिसके बारे में लोग काफी चर्चा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को यहां से टिकट दिया है। इस सीट पर भाजपा ने इस बार तरविंदर सिंह मारवा को चुनावी दंगल में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने यहां से दिल्ली नगर निगम के मेयर रह चुके फरद सूरी को टिकट दिया है। इस सीट पर जनता 2013 से लगातार आम आदमी पार्टी को नेतृत्व करने का मौका देती आई है। लगभग 1.5 लाख मतदाताओं वाली इस विधानसभा सीट पर पंजाबी मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है।
अक्षित वैद्यन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज छत्तीसगढ़ में रायपुर के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT रायपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर के छात्रों के साथ बेहतर भारत के निर्माण के लिए विचार विषय पर एक संवाद सत्र की अध्यक्षता करेंगे। आकाशवाणी मध्य प्रदेश में वन्य जीवों और मनुष्यों के बीच संघर्ष को टालने में अहम भूमिका निभा रही है। आकाशवाणी शहडोल हाथी, भाग और तेंदुओं सहित वन्य जीवों की आवाजाही के बारे में लोगों को सचेत करके एक नई भूमिका निभा रही है। इससे मानव पशु संघर्ष और उससे जुड़ी दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा।
आकाशवाणी शहडोल ने शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जिलों के ग्रामीणों को न केवल हाथी, बाघ और तेंदुए के आने के बारे में सचेत करना और शिक्षित करना शुरू कर दिया है। आकाशवाणी शहडोल के कार्यक्रम प्रमुख अविनाश दिवाकर ने बताया कि इस तरह के अलर्ट और ऑडियो क्लिप को लोकप्रिय कार्यक्रमों, खासकर संगीत और किसानों से जुड़े कार्यक्रमों के साथ प्रसारित किया जा रहा है।
वन विभाग की सूचना और निर्देशों का प्रसारण तो लगातार किया ही जा रहा है। वन प्राणियों से टकराव की स्थिति में क्या करें और क्या नहीं, जनहित के रूप में प्रसारित की जा रही है।
मुख्य वन संरक्षक शहडोल अजय पांडे ने बताया, लेकिन जमीनी स्तर पर इसके नतीजे सामने आने लगे हैं।
ग्रामीण जो है वो नियमित रूप से रेडियो सुनता है और उसको ये जानकारी होती है कि अब कहीं पे भी हाथी का मूवमेंट है या दूसरे भी जानवर हो, उससे वो सचेत रहता है।
मध्य प्रदेश में आकाशवाणी स्टेशनों के इन नवाचारों ने आम लोगों की बेहतरी के लिए आकाशवाणी की भूमिका को नए सिरे से रेखांकित किया है। शहडोल से अरविंद पांडे के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
और अब खबरें महाकुंभ से। विदेश मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने महाकुंभ 2025 के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए विदेशी पत्रकारों के साथ कल नई दिल्ली में संवाद सत्र का आयोजन किया। अधिकारियों ने इस महाकुंभ के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जानकारी दी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्राजील के रियो कार्निवल में 70 लाख, हज यात्रा में 25 लाख और जर्मनी के अक्टूबर फेस्ट में लगभग 72 लाख लोग पहुंचते हैं, लेकिन महाकुंभ 2025 में इससे अधिक लोगों की पहुंचने की आशा है।
सरकार ने इस महाकुंभ में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया है, जिसमें करीब 15 लाख विदेशी पर्यटकों के शामिल होने की संभावना है। एकता और समानता के इस वृहद कार्यक्रम में विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के लोग एक साथ आ रहे हैं। महाकुंभ 2025 के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए के योगदान की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की GDP में भी 1% से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
मौसम विभाग ने आज पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में छिटपुट वर्षा और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ वर्षा की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल।
नीदरलैंड में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में भारत के गुकेश डोमाराजू ने कल राउंड 3 में फैबियानो कारुआना के साथ ड्रॉ खेला। अन्य मैचों में रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने हमवतन अर्जुन एरिगेसी को हराया और उज्बेकिस्तान के नोडिरबेक अब्दू सत्तोरोव के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गए। एक अन्य भारतीय खिलाड़ी लियोन ल्यूक मेंडोका ने हमवतन पेंटाला हरिकृष्णा के साथ ड्रॉ खेला। चैलेंजर सेक्शन में दोनों भारतीय खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू और दिव्या देशमुख को हार का सामना करना पड़ा। आज राउंड 4 के मुकाबलों में गुकेश का सामना रूस के एलेक्सी सरना से, प्रज्ञानंदा का सामना हमवतन मेंडोका से और अर्जुन एरिगेसी का सामना रूस के व्लादिमीर फेडोसोव से होगा। उधर मेलबर्न में आज ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल की मिक्स्ड डबल स्पर्धा में रोहन बोपन्ना और झांग शुआई की भारत तथा चीन की जोड़ी का सामना ऑस्ट्रेलिया की जॉन पियर्स और ओलिविया गेडेकी की जोड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आज सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना स्पेन के कार्लोस अल्काराज से होगा। महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की आर्याना साबालेंका का सामना रूस की अनास्तासिया पावलुचेनकोवा से और अमेरिका की कोको गॉफ का सामना स्पेन की पाउला बडोसा से होगा। इसके अलावा आईसीसी अंडर 19 महिला क्रिकेट 2020 विश्व कप में आज ग्रुप ए के मुकाबले में भारत का सामना मेजबान मलेशिया से होगा। ये मैच कुआलालंपुर में दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। भारत फिलहाल ग्रुप ए में 2 अंकों के साथ शीर्ष पर है।
हॉकी इंडिया लीग में कल पुरुष वर्ग में जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब ने शराची राड बंगाल टाइगर्स को 2-1 से हरा दिया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
रांची में हुए महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग के मुकाबले में जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब ने दिल्ली एसटी पाइपर को 5-1 से हराया। वहीं राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुए पुरुष वर्ग के मैच में जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब ने शराची रार बंगाल टाइगर्स को 2-1 से मात दी। हॉकी इंडिया लीग में आज शाम 6 बजे महिला वर्ग में ओडिशा वॉरियर्स और सूरमा हॉकी क्लब, वहीं पुरुष वर्ग में यूपी रुद्राज और टीम गुनासिका के बीच मुकाबला रात 8:15 बजे राउरकेला में होगा। आकाशवाणी के लिए मैं सोना
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
धन्यवाद विशाल। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने को आज के सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, अमेरिका में फिर ट्रंप। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद ट्रंप की अमेरिका में स्वर्ण युग की घोषणा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा, अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार अदालत ने दोषी पर लगाया 50,000 रुपए का जुर्माना, पीड़ित परिवार को 17 लाख देने का भी आदेश। गंभीर मामलों में आरोपितों के चुनाव लड़ने पर लगनी चाहिए रोक, सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी को दैनिक जागरण ने प्रमुखता दी है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली दंगों में आरोपित ताहिर हुसैन की चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग पर की कड़ी टिप्पणी। तय पार्किंग के बिना इमारत बनाने की मंजूरी नहीं, हिंदुस्तान लिखता है। वाहनों के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, कहा राजधानी दिल्ली में तय पार्किंग स्थल के बिना किसी इमारत के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। एनसीसी कैडेट विकसित भारत के सपने को करे साकार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इन शब्दों को लोकसत्ता ने दिया है।
धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। उन्होंने कहा अमेरिका का स्वर्णिम युग शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित वैश्विक नेताओं ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी बधाई। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापस लेने के बाद 699 उम्मीदवार मैदान में। और नीदरलैंड में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में आर प्रज्ञानंदा भारत के नंबर 1 अर्जुन एरिगेसी को हराकर शीर्ष स्थान पर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।